نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم تجلیات نبوت کے سلسلے میں, لیکن یہ اپنی جگہ ایک پورا ٹاپک ہے, آج ہم بات کریں گے خانہ نبوت پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا؟ میں سب سننے والوں سے یہ کہوں گی کہ اس وقت دل کی گہرائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کیجئے, ان کو ایک بشر سمجھیے, ایک بہت مصروف انسان سمجھیے, با مقصد انسان, لیکن کیسے بیلنس کرتا ہے؟ ہم جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں, جن کا گمان بھی یہ اور حقیقت بھی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں, کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں یا لگا چکے ہیں, تو کیسے بیلنس کریں؟ یعنی ہم اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح سے بیلنس کر کے چلیں؟ ساتھ ساتھ اپنی اس روشنی میں اس کو سننا, اپنے لیے عمل کے نقطے انشاءاللہ ہم نے لینے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کون سا تھا اور کیسا تھا. آپ دیکھیے کہ کسی بھی فیملی کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر کیا ذہن میں آتا ہے کہ وہ وہاں کون رہتا ہے. اب آپ سوچیں, ہم ایک گھر بنا رہے ہیں نا, آپ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں اپنے نوٹس میں چاہیں تو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کتنے تھے اور کون تھے؟ مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 یا 12 بیویاں تھیں, یعنی کبھی 11 بھی رہیں, کبھی 12 بھی ہوئیں, یعنی وقت کے ساتھ کچھ بیویاں, ظاہر ساری شادیاں آپ نے اکٹھی تو نہیں کی تھی نا, ایک ایسا بھی وقت تھا کہ آپ کی صرف ایک بیوی تھی, ابھی ہم پڑھیں گے, ہاں کبھی 9 بھی تھی, کچھ تھی, لیکن چینج ہوتا رہا. ان میں سے 9 بیویاں آپ کی زندگی کے اخیر میں آپ کے ساتھ موجود رہیں, یہ جملہ آپ کے لیے قابل غور ہے. یعنی جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کے عقد میں یعنی زندہ آپ کی جو بیویاں تھیں وہ کتنی تھیں؟ 9 تھیں, اور 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں. ٹھیک ہے, 2-3 بیویوں کی موت کا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. یہاں یہ نقطہ نوٹ کرنے کا کہ نبی بھی ہو تو ایسے صدموں سے نہیں ہٹ سکتا. آپ سب جانتے ہیں جو میرڈ ہیں ان کو خاص طور پہ اس کا اندازہ ہوگا کہ شادی کے بعد سب سے اہم رشتہ شوہر اور بیوی کا بن جاتا ہے. بیوی اتنی زیادہ کسی کے لیے ٹچی نہیں ہوتی جتنی شوہر کے لیے. شوہر کچھ کہہ دیں تو خوش, شوہر کچھ کہہ دیں تو ناراض, شوہر ہیں تو خوش, نہیں ہیں تو مس کرتی ہیں. اور اس رشتے کا ساتھ چھوٹنا مجھے لگتا ہے کہ انسان کے ساتھ والا ایک پہلو گرنے کے برابر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو صاحب بالجم کہا. تو اللہ کے نبی کو یہ صدمہ 2-3 بار پہنچا. یہاں نوٹ کیجئے کہ اگر نبی مختار کل ہوتے, اگر اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہوتا, تو کیا نبی اس صدمے کو اپنے لیے برداشت کرتے؟ لیکن اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون سی تھی, بالترتیب دیکھیں گے. آج آپ کو ترتیب بھی مل جائے گی, اور انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں جو بھی لوگ پہنچیں گے یا جو پہنچ چکے ہیں وہ اس کو سنتے وقت محسوس کریں گے کہ وہاں بھی ایسے چند آیات ہیں جس کی روشنی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے لیے ایک ریکیپ بھی ہوگا. سب سے پہلی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ بنت خویلد. اس وقت چونکہ ہم علم کی محفل میں نا, تو ناموں کو ٹھیک سے کہنا اور پڑھنا لکھنا ہم سیکھیں گے. خدیجہ, ہم کہتے ہیں خدیجہ, عموماً ہمارے کلچر میں کیا کہتے ہیں, حضرت خدیجہ, غلط کہتے ہیں, خدیجہ دال ہے, خ دال یا جیم ہا, حضرت خدیجہ. دیکھیے اب آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نا, روٹ ورڈ سے معنی بدل جاتے ہیں نا. اب خدیجہ کا روٹ کیا ہوگا؟ خا دال جیم, اور خدیجہ کہیں گے تو خا تا یا خا توا جیم ہوگا. تو خدیجہ بنت خویلد, خا واو یا لام دال, باپ کا نام ہے ان کے, رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان سے شادی کی تھی, ان کی عمر مبارک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی. کتنے سال کا فرق ہے؟ 15 سال کا. یہ 15 سال کا فرق تو اس وقت بھی انیوژل لگتا ہے جب لڑکا بڑا ہو اور لڑکی چھوٹی ہو. عموماً ہمارے کلچر میں 3-4 سے لے کے 7-8 سال کا فرق نارمل ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں. اور دیکھا جائے تو یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, کیونکہ عورتیں جلدی میچور ہو جاتی ہیں अगर बराबर की उम्र का लड़का लड़की होगा ना, तो मान लीजिए कि लड़की डोमिनेंट हो जाएगी। औरत के अंदर अल्लाह सुबहाना ताला ने प्रोडक्टिविटी बहुत रखी है, तो औरत ज़्यादा समझदार हो जाती है जल्दी। और छोटी थोड़ी सी लड़की होना, लड़का बड़ा होने में एक तो रिस्पेक्ट का पहलू भी आ जाता है कि लड़का ज़रा बड़ा होगा, समझदार होगा, उसने कवाम बनना है, वो उस लड़की की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। ये जनरल हालात की बातें हैं, लेकिन यहाँ देखिए, पहली शादी 25 साल का अनमेरिड लड़का और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, सारे शहर में उसकी धूम है उसके अखलाक की। क्या अल्लाह के नबी को कोई छोटी उम्र की लड़की नहीं मिल सकती थी? मिल सकती थी, लेकिन हमारा क्राइटेरियन रिश्ते करने का कुछ और होता है, अल्लाह का कुछ और होता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी खैर देनी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए से अपने नबी को, कि जिसके लिए ये ज़रूरी था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ शादी से पहले 2 दफ़ा शादीशुदा थी, बेवा हो चुकी थी, और आपके 2 या 3 बच्चे भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय हज़रत इब्राहिम के बच्चे का नाम है, ये वो हज़रत इब्राहिम नहीं है जिनको हम हमेशा सुनते, इब्राहिम नाम का आपका एक बेटा था, ये बीबी मारिया के बतन से था। इसके अलावा सब बच्चे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से हुए। हज़रत खदीजा की एक और खूबी कि आपने इनके जीते जी दूसरी शादी नहीं की। रमज़ान सन 1090 में 65 यानी 65 ईयर्स की एज में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ मक्का में, और इनको हजून में दफन किया गया। अब ये कहानी हम यहाँ तो बस सिर्फ एक खुलासा पढ़ रहे हैं ना, लेकिन सीरत का सेशन जिन्होंने सुना है पूरे का पूरा, वो जानते हैं कि नबी सल्लम के लिए वो गम का साल था जिस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ। आमुल हुज़न कहा जाता है गम का साल। उसी साल आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। अबू तालिब अगर बाहर की दुनिया में आपके लिए एक ढारस थे, तो हज़रत खदीजा वो थी जो अल्लाह के नबी के लिए घर में एक बहुत बड़ा सहारा थी। जब लोग आपको ज़ख्मी करते, आपको इस्लाम की बात कहने पर दुखी करते, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी गमख्वार थी। इस वक्त चूंकि हम अलग डिटेल्स नहीं कर सकते, वरना सिर्फ हज़रत खदीजा पे एक पूरा दर्स मौजूद है, घंटा भी कम होता है फ़ज़ाइल खदीजा पे, इनके ऊपर पूरी पूरी बुक्स हैं कि कितनी प्यारी बीवी थी। कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि मुझे अल्लाह के नबी की मौजूद बीवियों में से किसी पर रश्क नहीं आता था, यानी वही जो एक सौकनापे का एक जल्लापा या कुछ ऐसा, सिवाय मुझे हज़रत खदीजा के। मैं कहती थी अल्लाह के नबी आप अभी उस बुढ़िया को भूले ही नहीं, वो जबड़े, वो सुर्ख होंठों वाली, सुर्ख दांतों, जबड़ों वाली और खुले दहन वाली हज़रत खदीजा बहुत खूबसूरत थी। वाइट कलर था इनका, और इनके जैसे बाज़ ख़वातीन पाकिस्तान में भी वो सख मलती है ना, तो इनका दाहन बड़ा रेड था, सुरख था, ऊंची लंबी खूबसूरत जिस्से की मालिक थी। जब नबी सल्लम को इन्होंने निकाह का पैगाम दिया, तो बहुत सारे सरदारों की भी ख्वाहिश थी कि हमारी इनसे शादी हो, लेकिन आप देखिए कि हज़रत खदीजा की भी तो ये कितनी बड़ी फरासत की बात है ना, कि उन्होंने इतने बड़ों बड़ों को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक़्त में बिल्कुल अपने कैरियर के आगाज़ में थे, और आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी, और आपने उनको एक्सेप्ट किया। तो हज़रत खदीजा ने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया। आप कह सकते हैं कि जैसे एक किसी अंग्रेज़ का कॉल है कि हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई औरत होती है, तो आप कह सकते हैं कि नबुव्वत के जो आगाज़ के दिन थे, और उसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें हुई और जो मामले चाहिए थे, फहम चाहिए थे, तो पीछे आपके ढारस हज़रत खदीजा की थी। इस्लाम को माल की ज़रूरत होती है, अल्लाह के नबी के पास माल हज़रत खदीजा का था। आपने अपना सारा माल नबी सल्लम को दे दिया कि आपको जहाँ जैसे चाहें खर्च करें। नबूवत का काम इतना बढ़ता गया कि आप अपने कमाने की तरफ नहीं तवज्जो दे पाते थे, तो हज़रत खदीजा का माल था जो शुरू में इस्लाम की जड़ों पे लगा। और इस तरह से अल्लाह के नबी ने उनकी ज़िंदगी में कोई शादी ना की। या फिर ये बात नुक्ता काबिले गौर है कि अगर आज कोई हमारे नबी के बारे में कोई बात कहता है, नाउज़ुबिल्ला कड़वी कसैली, तो उनको बताया जा सकता है कि 25 साल का जवान जो बिल्कुल यंग होता है, अगर उसको नाउज़ुबिल्ला बुरी आदत होती और वो रंगीले मिजाज का होता, तो फिर इस उम्र में वो कुछ 40 साल की औरत से तो शादी ना करता जो पहले से बच्चों वाली थी। तो हज़रत खदीजा के एहसानात बहुत हैं, हम इस वक्त डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने हज़रत खदीजा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाबरकत और खैर का ज़रिया बनाया, हमें अपने शोहरों के लिए बना दे। और जिनके घर वाले दीन पे लगे हुए हैं, उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत खदीजा हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं कि हम अपना तन मन धन अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए लगा दें, और फिर आप देखिए कि आप दुनिया से तो चली गई। हज़रत खदीजा की जहाँ बहुत सारी खूबियाँ, उसमें एक इनकी खसाइस में से भी एक ख़ास चीज़ है। खसाइस कहते हैं ख़ास चीज़ जिसको आप कहते हैं स्पेशलिटी, जैसे आज के दौर में कहते हैं ना फलां का नाम गिनीज बुक में चला गया, यानी प्रोमिनेंसी कह लीजिए। और वो क्या है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह की तरफ से सलाम पेश किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ारे हिरा में थे, जिब्राइल अलैहि सलाम आपके पास थे, इतने में हज़रत खदीजा आपके लिए खाना लेकर आई। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, जिसका ख़ुलासा क्या है कि ए नबी, खदीजा आ रही हैं, इनको अल्लाह की तरफ से सलाम दें। और बाज़ रिवायत में जिब्राइल के सलाम का भी तذکرہ मिलता है कि उन्होंने भी आपको सलाम कहा, और साथ ही फरमाया कि इनको जन्नत में उस महल की खुशखबरी दे दो जिसमें शोर व शगब नहीं होगा, पीसफुल। आप अल्लाह के रास्ते में कोई कुर्बानी करके देखें, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी ये देगा। तो हमेशा अपने लिए यही फिक्र रखा करें कि मुझे अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाना है इस दुनिया से कि जिसके बाद मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की दोस्तों के साथ कितना खूबसूरत मामला करते थे कि जब कभी कोई गोश्त या कोई सदक़े की चीज़ आती और आप दूसरों को भेजते, तो सबसे पहले हज़रत खदीजा की दोस्तों को भेजते। हज़रत फातिमा को देखते तो आपकी आंखें कभी भर आती, कहते कि मुझे ऐसे लगता है कि खदीजा आ गई है। और एक मौके पे जब आपकी बेटी ने अपने शोहर को छुड़ाने के लिए एक हार पेश किया, तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा कि ये हार खदीजा ने अपनी बेटी को दिया था, तो मुझे इसको देकर खदीजा याद आ गई। खुद से पूछें, मैं अपने शोहर के लिए कैसी हूँ, क्या खदीजा हूँ या कुछ और? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन अमल वाला बना दे। जब इनकी वफ़ात हुई, अल्लाह के नबी दुखी थे, मक्का के वालों का जुल्म व सितम आम हो चुका था, गम तकलीफ़ थी। अल्लाह ताला ने खदीजा के बाद जिस औरत को आपकी ज़ौजियत में दिया, वो हज़रत सौदा बिनते ज़मा रदी अल्लाहु अन्हा थी। सौदा सीन से है, वो दालहा बिनते ज़मा ज़ा, ये अपने चचाजाद भाई सुकरान बिन अमर के निकाह में थी। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और हबशा हिजरत की, फिर मक्का वापस आए। हज़रत सकरान रदी अल्लाहु अन्हो का इंतकाल हो गया। इनके बाद शवाल सन 10 नबवी में, यानी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के कोई 1 महीने बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली। इनकी वफ़ात मदीना में शवाल 54 हिजरी में हुई। अल्लाह अकबर, 54 हिजरा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 44 ईयर्स के बाद ये फौत हुई। और आप में से कुछ लोगों को शायद पहले से मालूम हो कि ये बड़ी उम्र की औरत थी, स्याह रंग की थी, और अरबी में सौदा कहते ही काली औरत को हैं, मोटे जिस्म की थी। ज़ाहरी तौर पे जो औरतों में कोई अट्रैक्शंस होती है, उस तरह की कोई अट्रैक्शन भी इनमें नहीं थी। और ये वही बीवी हैं कि जिनको एहसास हुआ किसी मौके पे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़ दें, तो मैं आपकी ज़ौजियत से निकल जाऊं, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बारी हज़रत आयशा को देती हूँ, क्योंकि अब मैं उम्र के उस दौर में हूँ कि मुझे इस तरह की चीज़ों की तलब नहीं है, तो आप चाहें तो आप हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा को मेरी बारी दे दें, जिस तोहफे को अल्लाह के नबी ने फिर कबूल किया था। तो उसके बाद आप देखेंगे ये अल्लाह के नबी के बाद भी इतना ज़िंदा रहीं, कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ हम ये बात भी सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी को पहली बीवी जो मिली बेवा, उम्र में 15 साल बड़ी बच्चों वाली, दूसरी बीवी जिस्मानी खूबसूरती कम उम्र की बड़ी, क्या मिजाज समझ में आता अल्लाह के नबी का, कैसे त्याशिकाना मिजाज था? नहीं। और ये वो दौर था जब अल्लाह के नबी अभी इतने मसरूफ़ भी नहीं थे, अभी तो खुद अखज़ करने के दिन थे ना। आप सोचते ना कि हम कोर्स कर रहे हैं तो हम बड़े बिजी हैं, बहुत मसरूफ होता है बंदा कुरान का कोर्स ज्वाइन करके। ये उस दिन आपको पता चलेगा, और अल्लाह करे कि आपको सबको पता चले जब आप अगले मरहले में शुरू होंगे, जब अगले राउंड में, जब सीखना भी है और साथ सीखना भी है सिखाने का, और जब उसके बाद दिन ब दिन आप देखेंगे काम जिस्मानी कम हो जाते हैं लेकिन जहनी और मामलाती काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह के नबी का सबसे मसरूफ दौर मदीना का दौर था, जब आप एक हाकिम भी थे। और ये शुरू के दिन जब जवान भी हैं, अकेले भी हैं, तो बीवियां देख लीजिए कैसी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है कोई औलाद भी नहीं हुई इनसे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी किसी से कोई बात कही या सुनी। लेकिन बहरहाल इनसे शादी के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी शादी हज़रत आयशा सिद्दीका बिनत सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हुमा से हुई। हज़रत आयशा, आयशा किसको कहते हैं जिंदगी बसर करने को। मैं आयशा का नाम लेती तो मुझे ऐसे लगता है कि ये अल्लाह के नबी की जिंदगी थी। ये जो हम कहते हैं ना ऐश कर लो, वो भी यही लफ्ज़ है, आयशा या ईशु ईशतन। कुरान पाक में आता है फी ईशत रौदिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हजरत सौदा के 1 साल बाद शवाल 11 नबवी में शादी की। इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 6 साल थी। फिर हिजरत के 7 महीने बाद शवाल यकम हिजरी में आपको रुख्सत किया गया। इस वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा किसी कुमारी औरत से शादी नहीं की। ये उम्मत की सबसे ज्यादा फकीह औरत है। फकीह कहते हैं बहुत समझदार, फिक्र रखती, समझ बूझ वाली, यानी आप कह लीजिए कि जिनको बहुत समझ बूझ थी दीन की, ये उनमें से थी। और छोटी उम्र में थी, क्यों थी ये भी हम इस पे बात करते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स इनके हम समझ लें। और एक स्ट्रेच में सारा करना भी इसलिए चाहती हूँ कि हमारे जहन में तकाबुल मौजूद रहे। औरतों पर इनकी फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद खाने की फजीलत। सरीद क्या होता है? जिसको आप आज के दौर में हरीसा कहते हैं। गोश्त में रोटियां डाल के अरब लोग पकाते थे, शोरबे नुमा की एक चीज़ होती थी और अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी। और एक मौके पे आपने हजरत आयशा के बारे में ये कमेंट दिया था कि आयशा को दूसरी औरतों पे ऐसी फजीलत हासिल है जैसे सरीद के खाने को दूसरे खानों पे। 17 रमज़ान 1757 यानी 57 हिजरी को इनकी वफात हुई और इनको बकी में दफन किया गया। आप देखिए कि हजरत सौदा का इंतकाल होता है 54 में और इनका होता है 57 में। उम्र में उनसे इतनी छोटी थी लेकिन वफात 3 साल के फर्क से हुई। अब आप देखिए हजरत आयशा सबसे ज्यादा जिसको आप कहना चाहिए कि कंट्रावर्सी चलती है तो अल्लाह के नबी के हजरत आयशा के साथ निकाह पे चलती है। हम इस वक्त उस तरह पढ़ नहीं रहे इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन समझ लीजिए पहली 2 शादियों की बात कभी किसी ने नहीं की। कभी आपने किसी प्रोपेगंडे में ये सुना कि अल्लाह के नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की औरत से शादी कर ली, बच्चों वाली से कर ली, बेवाओं से कर ली, शादीशुदा औरतों से कर ली? कभी नहीं सुना। जब सुनेंगे आयशा की शादी सुनेंगे तो यहाँ 6 साल की उम्र हो सकता है आपको भी कुछ खटका पैदा कर ले। तो आइए समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ दीन का हिस्सा थी। सल्लु कमा रअईतुमूनी उसल्ली के तौर पे जो बात कही गई कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो, तो जिस तरह नबी के ज़रिए से नमाज रोज़ा हज सिखाया गया इसी तरह से मुआशरत भी सिखाई गई, मईशत भी सिखाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल थे, और सिर्फ एक आइडियल हालात के लिए नहीं थे कि जिनकी 16 साल की खूबसूरत सी लड़की हो और 18 से 20 साल का खूबसूरत लड़का हो और उनकी शादी का रिश्ता हो जाए। ये दीन अरब के लिए भी है, अजम के लिए भी है, कालों का भी है, गोरों का भी है, ये शादीशुदा लोगों का भी है, ये कमारों का भी है, ये बेवाओं का भी दीन है और रांड का भी है। नबी सल्लम के जरिए से अल्लाह ताला हर मुमकिन सूरत जो 2 लोगों के बीच में निकाह की हो सकती है उसको वैलिड करना चाहते थे। बड़ी उम्र की औरत से शादी हो सकती है, शादीशुदा से शादी हो सकती है, बच्चों वाली से शादी हो सकती है, छोटी उम्र वाली से भी हो सकती है। आप कहेंगे कौन करता है? आप देखिए फिर बात कहूंगी कि इसको आइडियल हालात पे ना लें कि बड़े प्रोटोकॉल के साथ शादियां होती हैं और आप कहते हैं अच्छा लड़का इतनी साल का और लड़की ऐसी। नहीं, आपको पता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की मूवमेंट चल रही थी जब इस तरह के हालात बनते हैं, जंगी हालात, या आज भी इवन जिन जगहों पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ ये हालात देखने में आएंगे। बस अब होता क्या कि पूरे का पूरा घराना मारा जाता है, बाप भी गया, भाई भी गया, अब 7, 8, 10 साल की बच्चियाँ अकेली रह गई। अब इस्लाम क्या कहता है, देखिए एक बात समझिए, जब तक हम इस्लाम का पूरा नक्शा किसी के सामने नहीं रखेंगे ना, लोगों को समझ नहीं आएगा। अब हम तो दो बेटी की दोस्त को भी कहते हैं बेटी इधर आओ, सर पे हाथ फेर देंगे, गले से लगा लेते हैं। बेटे के दोस्तों को भी कहते हैं ये मेरा बेटा है, चलो बेटा मुझे उधर छोड़ो, उसके साथ स्कूटर पे बैठ के चले जाते हैं। इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम बहुत क्लियर एंड क्लीन है। किसी के साथ आपका रिश्ता है ना, या तो तीन रिश्ते होंगे, नसब का, हसब का, यानी नसब और हसब इकट्ठा कर ले, यानी सगा रिश्ता, आपका बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, ठीक है, आपका भाई हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, ये हो गए रिश्ते खून के। दूसरी सूरत है सहर का रिश्ता, ससुराली ताल्लुक से जो रिश्ते बनते हैं, मसलन आपका ससुर, दैट्स इट। ससुराल से सिर्फ दो ही चीज़ें मिलती हैं आपको, एक ससुर मिलता है और एक शौहर मिलता है, ये आपके महरम हो गए। यानी शौहर का मामला तो डिफरेंट है, लेकिन ससुर के साथ इंसान अकेले रह सकता, जा सकता, आ जा सकता। उसके बाद सौतेला बेटा, शौहर का बेटा, आप किसे नहीं, दूसरी बीवी से है, लेकिन आप उस मर्द की बीवी बन के रह रही हैं, तो सौतेला बेटा भी आपका बिल्कुल हमेशा के लिए महरम हो गया। इसके अलावा देवर, जेठ, देवरों के बच्चे, जेठों के नंदोई, ये सब इस्लाम इसको दूसरी कैटेगरी पे लेता है। तीसरी सूरत होती है रजात की, दूध पिला लिया। आप किसी को दूध पिला दें, वो आपका रजाई बेटा है, बिल्कुल मिसल सगे बेटे के, बिल्कुल सारी जिंदगी के लिए महरम है। आप हज पे जाएं, उसके साथ आइसक्रीम खाने जाएं, दवाई लेने जाएं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह दूसरी सूरतें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब इंसान दूध खुद नहीं पिलाता, उसकी बहन ने पिलाया, तो आप रजाई खाला बन गई, बिल्कुल वैसी ही खाला जैसी आप सगे भांजे की खाला है, फुफ्फी बन गई। इसके अलावा इस्लाम किसी को इजाज़त नहीं देता कि कोई गैर महरम किसी महरम के साथ इस तरह के लाओ। अब जब इस तरह के हालात बन जाते हैं, बाज़ जंगों में 15-20 बच्चियां किसी की बैठी हुई हैं और सब बाकी ख़त्म हो गए, या हालात कुछ इस तरह के एडवर्स हैं, और याद रखिए कि ये रुख्सतें हैं, पसंदीदा अमल नहीं है। हदीस में आता है कि कफ ढूंढो, काफ फा वाओ को कहते हैं, काफ फा, कुछ लोग उसको कफू पढ़ते हैं, हालांकि वाओ को प्रोनाउंस किया जाता है। कफ क्या कहते हैं कि बराबरी देखो, इस्लाम पसंद करता है लड़का कैसे, लड़की कैसी है, उनका मेलान, उनके रुझान, इंक्लाइनेशन देखो, उम्र देखो, खानदान देखो, ताकि मैचिंग अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हालात ऐसे बिगड़ जाएं, तो फिर उस बच्चियों को सरवाइव करने के लिए किसी के साथ अगर इस तरह निकाह में दे दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आप कहेंगे नहीं वो तो बाप के बराबर है, बाप के बराबर तो है, बाप तो नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक इस्तेसनाई सूरत है, और आप देखेंगे इस्लामी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको इक्का दुक्का मिसालों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस हुक्म की इबाहत मकसूद थी, मुबाह करना था अल्लाह ने इस काम को। दूसरी हिकमत, हजरत आयशा के साथ शादी में, और वो क्या कि उस दौर में एक मिथ थी, मिथ समझते हैं, ख्याल कि मुंह बोले भाई की बेटी जो होती है ना, वो अपनी बेटी के बराबर होती है। जैसे आज भी लोग कहते हैं ये तो मेरे अब्बू के दोस्त है, तो मैं इनको बाप समझती हूँ। ठीक है, समझना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कहते थे कि इसके साथ निकाह नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक और नबी सल्लम आपस में भाई थे, मुंह बोले भाई थे, कह लीजिए अपनी जुबान में। अब आपके साथ हजरत आयशा का निकाह करवा कर अल्लाह ने अरबों की इस रस्म को तोड़ा कि मुंह बोला भाई चचा नहीं होता, बल्कि वो गैर महरम होता है। तीसरी हिकमत जो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती है बाद में, कि अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए एक ऐसा किरदार तैयार करवाना चाहता था जिसने नबी के ज़ेरे साया तरबियत पाई हो। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि अमूमन जब लड़कियों की शादी होती है 15-20-25 साल में, तो उनकी एक पूरी पर्सनैलिटी डिवेलप हो चुकी होती है, बिल्कुल उनकी आदतें तक इतनी पुख्ता हो चुकी होती है। बाज़ दफ़ा वो कठोर की कठोर अपनी आदतों से हिलती नहीं, और थोड़े दिनों में घर तोड़ के आ जाती हैं, कहती हैं मेरा इसके साथ गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो एक मजबूत दीवार की तरह जम चुकी होती हैं। कुछ अक्लमंद होती हैं, वो अपने आप को ढालती हैं, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ता है। चूँकि नबी सल्लम की कोई औलाद इस तरह से नहीं थी, کہ جو بعد میں آپ کے کام کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے بہت وہم دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا. آخری بیٹی تھی جو فوت ہوئی, 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئی تھیں. تو لہٰذا حضرت عائشہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوڈنٹ بھی تھی. اب 9 سال کی عمر میں جب ایک بندہ آپ کو ملتا ہے, سارا وقت دیکھنا, کھانا پینا, آپ کی ڈیلنگز, اور باقاعدہ آپ اپنی بیویوں کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے, تو نتیجہ کیا ہوتا کہ حضرت عائشہ نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے وہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹس تھے. پھر اس میں ایک خاص طور پہ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی سامنے آئی. آج آپ جتنے بھی ابواب احادیث کے پڑھیں گے, پیریڈز کے مسائل, شوہر بیوی کے مسائل, جنابت کے مسائل, یہ حضرت عائشہ سے موسٹلی ملتے ہیں اور باقی بیویوں سے بھی ملتے ہیں. تو گویا کہ حضرت عائشہ ایک علم کا خزانہ بنی. اللہ نے ان کو پھر لمبی عمر بھی دی, تقریباً نصف صدی تک آپ کے بعد اسلام کی خدمت کرتی رہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو آدھا علم دیا گیا پوری شریعت کا. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے فتووں کے آگے خاموش ہو جاتے تھے کہ اب ہم اس کے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اور فہم بہت تھا, چھوٹی عمر میں جس کو اتنا پیارا ساتھی مل گیا اس کا فہم تو خود ہی بڑھے گا. ہماری تو مت ہی ماری جاتی ہے شادیوں کے بعد, جو تھوڑا بہت اندر خیر کا کوئی مادہ ہوتا ہے وہ بھی رشتوں اور نبھا اور مصلحتوں کے نام پہ ہم وہ دین روزہ نماز چھوڑ کے کہتے ہیں پتہ نہیں شادی ہوئی تھی تو کچھ اور تھے, اب تو پتہ نہیں کیا بن گیا. تو یاد رکھیے کہ انسان کو اچھا رنگ لینا چاہیے, برا چھوڑنا چاہیے. تو گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری بیوی تھی.